शांति। प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी तथा हमारे तरफ से आप सभी भाई बहनों का इस मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज के ही दिन भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था 75 साल पहले। तो अंग्रेज तो चले गए और हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन बाबा यही कहते हैं ना, अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे दुश्मन कौन है? विकार, माया, रावण। उस दुश्मन से तो हम नहीं हुए स्वतंत्र। तो स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? स्वतंत्र शब्द में ही अर्थ भी समाया हुआ है। स्व का तंत्र, तंत्र माना कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम, कोई प्रणाली या राज्य, नियम, मर्यादाएं, संविधान, ये सब तंत्र शब्द में आता है। तो स्व का तंत्र अर्थात स्व पर राज्य, ये है सच्ची स्वतंत्रता। एक है स्वतंत्रता और दूसरा शब्द है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि नियम मर्यादाओं में चलना, कानून के अंतर्गत भी चलना और अंतर बाहर स्वतंत्र होकर चलना, कोई आपके ऊपर अधीन न हो, कोई आपको पराजित न करे। तो एक है स्वतंत्र और दूसरा है परतंत्र। तो दूसरे के शासन में नहीं, अपना शासन, अपना अधिकार, लेकिन मर्यादाओं में रहकर। इसलिए जब भारत स्वतंत्र बना तो अपना संविधान बना और उस संविधान के अनुसार हम सब देशवासियों को चलना है, यही लक्ष्य था। परंतु इसके विरुद्ध में स्वच्छंदता क्या है? मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो करूं, मैं जो चाहूं सो करूं। अब जो चाहूं सो करूं माना जो इस देश के नियम मर्यादाओं अनुसार नहीं है वो भी मैं करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई अमेरिका से यहाँ आ जाए और वो, हाँ तो राइट साइड गाड़ी चलाते, भारत में लेफ्ट साइड चलाते हैं, वो राइट साइड पर गाड़ी चलाने के अभ्यासी है और भारत में वो गाड़ी चलाता है, पर कहता मैं तो राइट साइड ही गाड़ी चलाऊंगा क्योंकि वही मेरा अभ्यास है, मैं जो चाहूं सो करूं। हो सकता है ऐसे? तुरंत पुलिस पकड़ लेगी, तुम इस तरफ से क्यों आए हो, तुमको उस तरफ से जाना है। तो स्वच्छंदता माना मैं जो चाहूं सो करूं, नियम मर्यादाओं के विरुद्ध जाकर भी मैं जो चाहूं सो करूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो बोलूं, जो चाहूं सो करूं, कोई नियम मर्यादाएं मेरे लिए नहीं है, वो है स्वच्छंदता। तो बाबा हमें कहते हैं स्वतंत्रता तो बहुत सुंदर चीज है, स्व का तंत्र, स्व पर राज्य, अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य, अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज्य, सबके दिलों पर राज्य, किसी को हराना नहीं है लेकिन सबको जीतना है। दोनों में अंतर है या एक ही बात है? किसी को हराना और किसी को जीतना अंतर है या एक ही बात है? क्या अंतर है? किसी को जीतना और किसको हराना? जी माना किसी को हराना यानी खुद जीतना, लेकिन वो एक कंपटीशन हो जाता है। पर किसी को जीतना माना उसको सरेंडर कराना, वो स्वयं सरेंडर हो जाए कि आप जीते हम हारे, बिना कोई हिंसा के, बिना कोई हथियार पवार के सरेंडर कराना माना उसको जीतना, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते दिल जीतना। क्योंकि बाबा तो कहते बाहुबल से तो आप किसी को जीत नहीं सकते हो, क्रोध के बल से, नफरत के बल से, हिंसा के बल से आप किसी को भी जीत नहीं सकते हो। चलो बहुत क्रोध किया आपने किस पर, वो आपसे अंदर तो बहुत घृणा करेगा और चलो बाहर से आज्ञा मान भी लेगा, लेकिन अंदर में उसकी वो जलता रहेगा, उसकी क्रोध की अग्नि बढ़ती जाएगी और एक दिन उसका प्रतिशोध, उसका बदला जरूर लेगा। लेकिन अगर हम नम्रता का उपयोग करते हैं, प्रेम का उपयोग करते हैं, सहानुभूति का उपयोग करते हैं, दया का उपयोग करते हैं, तो हम उसका दिल जीत सकते हैं और वो खुद ही सरेंडर हो जाएगा। इसको कहते हैं किसी को जीतना। किसी को हराना एक कंपटीशन का रूप है। तो कंपटीशन हमारी किसी के साथ नहीं है। बाबा ये भी कहते हैं रेस में दौड़ो, लेकिन रेस में दौड़ने का मतलब ये नहीं है किसी को गिरा के और आगे चले जाओ, ये रेस में दौड़ने का मतलब नहीं है। वो भी दौड़े मैं भी दौड़ूं, पर मैं ज्यादा शक्ति यूज करूं तो मैं उसे आगे जाऊं, बस को गिरा के आगे जाऊं, गिराया और फिर कहूंगी ये हार गया, ये जीतना नहीं है। पर मैं इतनी अंदर की शक्ति बढ़ाऊं जो मैं उनसे आगे चला जाऊं, उसके अंदर जो विशेषता है वो रहने दो, उसको पर प्रहार न करो, लेकिन मैं अपनी ऐसी विशेषता को बढ़ाऊं जो मैं उनसे आगे जा सकूं। तो दूसरे से भेंट नहीं करनी है, लेकिन अपने से भेंट करनी है। कल जो मेरी स्थिति थी उससे आज मेरी स्थिति बेहतर हुई या नहीं, कल जो मेरे सामने परिस्थिति आई उसमें मैंने सहन शक्ति नहीं अनुभव की, पर आज मेरे अंदर वो सहन शक्ति आई, आज मैंने उस बात को जीता तो मेरी प्रगति हो गई, तो मैं आगे बढ़ गई। इसी प्रकार स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसको बाबा कहते ना टांग खींचना, स्वच्छंदता, वो क्यों आगे बढ़े, मैं क्यों ना बढ़ू, अरे बढ़ो ना, तुमको किसने रोका है, तो अपने ढंग से बढ़ो, पर मुझे रोक करके आप बढ़ो ये तो गलत हो जाएगा। तो सबके दिलों पर राज्य करना, सबका दिल जीतना, और जो सबका दिल जीत सकता है तो बाबा कहते हैं वो विश्व को भी जीत सकता है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? कैसे बना नर नारायण और कैसे बनी नारी लक्ष्मी? क्योंकि सबका दिल जीता है संगम युग पर अपने दिव्य गुणों से, और उन दिव्य गुणों के आधार से सब उनके आगे झुक गए। आज की दुनिया में उस प्रकार का बर्ताव कहाँ है? इनको गिरा के आगे बढ़ना है, फिर छल कपट निंदा चुगली बेईमानी हेराफेरी, हाँ जो सच साम दाम दंड भेद सब हथकंडे अपनाना और उस पर राज्य करना। अंग्रेजों ने क्या किया? यही तो किया। उनकी क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल, एक को दो करो और फिर दोनों पर राज्य करो, वो उनको कमजोर करो और उन पर शासन करो। और यहाँ है मैनेजमेंट में हम यही सिखाते हैं। मैनेजमेंट में वो एक कहानी देते ना, पहले एक कहानी बहुत प्रसिद्ध होती थी, खरगोश और ये कछुए की कहानी। तो उसमें बताते हैं कि दोनों ने रेस की, हाँ दोनों ने कहा रेस करेंगे कौन पहले पहुंचता है। तो कछुआ तो धीरे धीरे चलता है, तो खरगोश ने क्या सोचा, ये तो बहुत धीरे चलेगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर भी मैं आगे चला जाऊंगा। और आराम क्या किया, नींद आ गई और खरगोश धीरे 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 पहुंच गया। फिर दूसरी बार ट्राई किया तो फिर उसने वो सतर्क हो गया और वो जल्दी पहुंच गया। खरगोश तो वो कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। लेकिन फिर रूट बदली किया तो उस रूट में नदी आती थी। अब नदी आती है तो खरगोश तो डूब जाएगा। फिर दोनों ने कहा अच्छा क्या करेंगे, तो खरगोश तो आगे चला गया और नदी आ गई तो रुक गया, और तब तक वो कछुआ पहुंच गया। और कछुए ने कहा, अभी आगे की कहानी है, वो तो वहां तो ठीक है, फिर आगे की कहानी क्या है, वो नदी पार करनी थी। तो कछुए ने कहा ठीक है, क्योंकि खरगोश तो बेचारा मायूस हो गया, मैं नदी कैसे पार करूंगा। तो कछुए ने कहा अच्छा तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको पार ले जाऊंगा। और दोनों साथ में विजयी हो गए दोनों साथ में विजयी हो गए, क्योंकि उसने उसको मदद किया। तो मदद किया, साथी बन गए, दोस्त बन गए, तो दोनों ही जीत गए। एक और भी कहानी बताते ना, कि एक पुल पर पास होना था, तो दो बकरियां आमने सामने आई, लेकिन वो इतनी सिकुड़ी थी वो पुल, जो एक ही पास कर सकता था, या तो वो। तो टकराई। अब टकराने से क्या होगा? तो आखिर एक नम्र बनी, उसने कहा ठीक है मैं झुकती हूँ, आप मेरे ऊपर से क्रॉस हो जाओ। और वो क्रॉस हो गई और वो भी उठ के चली गई, हो गया समझौता हो गया। तो किस आधार पर समझौता हुआ? दोनों ने जीत पाई ना, यानी इनको हरा करके मैं जीतूं, पर ये भी जीते मैं भी जीतूं, तो दोनों को मिले। तो ये नम्रता काम करती है, प्रेम काम करता है, दया काम करती है, इसको दैवी गुण कहते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, कि सबका दिल जीतो। आज भी बाबा ने कहा न कि अमेरिका रशिया, दो बिल्ले लड़े और मक्खन किसको मिल गया? भारत को मिल गया। तो भारत को मक्खन किस आधार पर मिला? हथियारों के बल से नहीं, लड़ करके नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि से। मेरे को किसी ने वो व्हाट्सअप भेजा, ये जो तिरंगा आज है, तिरंगा का दिन है, तिरंगा हर घर घर में तिरंगा, घर घर में तिरंगा, आप अभी फोन करेंगे तो वो तिरंगा ही आता है एडवर्टाइजमेंट। तो तिरंगा का अर्थ बताया है, तीन रंग है और ये तीन रंग जो है वो तीन लोकों का रंग है। नीचे माना साकार लोक, बीच में सफेद माना आकार सूक्ष्म वतन, और ऊपर केसरिया माना गोल्डन रेड, तो ये निराकारी दुनिया। तो ये तीन लोकों की निशानी है, तो तीन लोकों पर राज्य, तीन लोक और बीच में शिव बाबा। तो शिव बाबा भारत में आते हैं और भारत में हमें वो राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं, तो हम तीन लोकों के मालिक बन जाते हैं, सारा मक्खन भारत के हाथ में आ जाता है। लेकिन क्या युद्ध करके नहीं, बॉम्ब गिरा करके नहीं, किसी की हत्या करके नहीं, लेकिन किस आधार पर? सबका दिल जीत कर। वही तो कर रहा है ना मोदी जी, क्या कर रहा है? यही काम कर रहा है, राजनीति से ज्यादा कूटनीति, इसको कहते कूटनीति, डिप्लोमेसी मिलाना। तो बाबा हमें कहते हैं पहले स्व का राज्य लेना है, स्व का राज्य लेना है, स्व पर राज्य करना है। तो हम अपने आप से पूछें, हम सच्चे स्वराज्य अधिकारी बने हैं क्या? पहले मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है क्या? मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में है? ये हाथ किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं है, ये हाथ दाता के हाथ है। हाँ, दाता के हाथ कैसे दिखाते हैं? देवियों का हाथ कैसे दिखाते? वरदानी हाथ। फिर आशीर्वाद का हाथ कैसे दिखाते? ऐसे ऐसे ऐसे। और महालक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते? ऐसे। ये सब दाता के हाथ है, देना देना। तो बाबा कहते देवता कौन जो देता है, तो देना ये दाता का हाथ, ये उसके लिए हाथ है, किसी को थप्पड़ मारने लिए नहीं है। तो एक एक इंद्री क्या दाता बन करके सेवा कर रही है? ये आंखें किस लिए है? ये आंखें दृष्टि देती है, तो दृष्टि देती है जिसके आधार से वो निहाल हो जाता है ना? किसी गुरु के लिए कहेंगे ना, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मैं निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया। तो किसकी दृष्टि पड़ी तो निहाल हो जाते हैं, और अगर ऐसी किसी की कुदृष्टि पड़ी तो उसको तो बद्दुआ मिलती है। बताते हैं ना वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला, उसको बद्दुआ मिली क्योंकि उसने बुरी नजर रखी। तो कहां तो किसकी दृष्टि निहाल करती है और कहां तो किसकी दृष्टि बद्दुआ दिलाती है। तो ये दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दुआएं दिलाई या बद्दुआएं दिलाई? दुआएं दिलाई। इसको कहते हैं स्वराज्य। और उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे इस कलयुगी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि आंखें बंद तो नहीं करेंगे, आंखें तो खुली है, सूरदास की तरह आंखों को फोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि ये दृष्टि बहुत सेवा करती है। लेकिन इस दृष्टि से क्या देखें? जो बाबा कहते आत्मा देखो, अब इस दृष्टि से तो नहीं देख सकते आत्मा, लेकिन मन की आंख से जरूर आत्मा को देख सकते हैं। तो मन भी तो आत्मा में है, तो वो मन से इन आंखों द्वारा आत्मा समझे, ये है दृष्टि से आत्मा देखना। तो ये नैन क्या होने चाहिए? कमल नैन। चारों ओर कीचड़ है, लेकिन मेरे नैन कमल के समान है, क्योंकि आंखों से जो देखते हैं उसका प्रभाव तुरंत मन पर पड़ता है। इंद्रियों पर, इंद्रियों का प्रभाव मन पर बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो इन इंद्रियों का प्रभाव मन पर न पड़े, लेकिन मन का प्रभाव इंद्रियों पर पड़े। एक है इंद्रियों का प्रभाव मन पर पड़ता है, पड़े, हम जो देखते हैं तुरंत मन में वही सोचते हैं, परंतु हम जो सोचते हैं वही देखें, ये नहीं कि जो देखते हैं वही सोचे, अंतर है ना दोनों में। अब कोई पोस्टर देखा, कोई अश्लील पोस्टर, बहुत पोस्टर क्या क्या दिखाते हैं, वो देखा और तुरंत मन विचलित हो गया, लेकिन हम वो देखे पर मन इन आंख पर हावी है, तो ये आंखें उसको चलो देख भी लिया, लेकिन फिर भी हम उसमें पॉजिटिव क्या लेंगे, ये भी आत्मा ही तो है ना, ये भी आत्मा ही है, शरीर को नहीं देखेंगे। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, सुनाई तो जरूर देगा, कान थोड़ी हम बंद करेंगे ना, कोई बहुत गालियां दे रहा है, मैं कान बंद कर दूं, नहीं सुनना है मुझे, नहीं सुनना है, वो करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा अभ्यास हो कि सुनते हुए नहीं सुन रहे हम, जो बाबा हमको सुना रहे हैं वही मैं वही सुनूं, बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, बच्ची इन पर दया करो, ये नहीं जानता ये क्या क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तो उस पर भी दया करो। तो ये कान क्या सुनने के लिए है? केवल ज्ञान सुनने के लिए, बाबा की बातें सुनने के लिए, और बातों के लिए नहीं है। तो ये कान भी है, क्या बन जाएंगे? कमल। तो कमल नैन, कमल कर्ण, हाँ ये कर्ण कर्ण, ये भी कान भी कमल जैसे हो जाएंगे, मुख कमल, मुख भी कमल समान। ये जीभ से क्या शब्द निकले, क्या शब्द निकलने चाहिए? ये जीभ है ना, कहते हैं ना इसको कोई हड्डियां नहीं है, हड्डियां नहीं होती, क्योंकि जितना आप खींचना चाहो जीभ को खींच सकते हो। हड्डी वाली कोई चीज होगी तो उसको खींच थोड़ी सकते हैं, तो उतनी रहेगी, पर इसमें केवल मसल्स है, तो मसल्स होने के कारण उसको जितना चाहो खींच सकते हैं। लेकिन ऐसी ये जीव है जिसको अंदर कोई हड्डियां नहीं है, लेकिन वो हड्डियों को तोड़ सकती है। क्योंकि ऐसे शब्द बोल देते तो दूसरे उनको मार भी सकते, तुमने ऐसे क्यों बोला मुझे, जब वो तो कहेंगे भाई जीव ने बोला, मैंने तो बोला नहीं, तो जीव को मारो। लेकिन जीव किसकी है, तो मेरी ना। तो बाबा कहते ये सारी इंद्रियां मेरे वश में हो, मन उनका मालिक हो, मन इंद्रियों का मालिक हो, मन जैसे चलाए वैसे इंद्रियां चले, मन जो सोचे उस अनुसार इंद्रियां काम करे, और मन के ऊपर फिर बुद्धि है, इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। तो सोचने का काम तो मन का, समझने का काम बुद्धि का, और फिर कर्म करो। कर्म थर्ड स्टेज है, ये इंद्रियों द्वारा कर्म ये तीसरी स्टेज है, पहली स्टेज है सोचना, फिर दूसरी स्टेज है समझना, क्योंकि सोचेंगे ना ये मुझे करना है, फिर दूसरी स्टेज समझना कि ये अगर मैं करूंगा इसका नतीजा क्या होगा, ये है समझना। और इसका नतीजा अंत अच्छा होगा फिर करना। पर अगर बुद्धि निर्णय देती इसका नतीजा गलत होगा, बुरा होगा, फिर इंद्रियों को वश में करना, कर्म नहीं करना। परंतु जो देह अभिमानी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, बिना सोचे बिना समझे फट से कर देगा, गलत काम कोई कर लेगा। अब करने के बाद वो मन बुद्धि की क्रॉस कर लिया, सीधा थर्ड स्टेज, सीधा कर लिया। फिर करने के बाद समझा कि ये गलत था, फिर समझने के बाद सोचते अभी क्या करें। पहले तो सोचो समझो फिर करो ना, सोच समझ कर करो। इंग्लिश में भी कहते हैं लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप माना जैसे हमको कूदना है तो पहले तो देखेंगे नहीं कहां तक ये जाएगा। अब बहुत बड़ी खाई है और मैं ऐसे कूद जाऊं तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो जब कूदो तो देखो कितना गहरा है, कहां तक होगा, क्या इसका नतीजा होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसलिए पहले देखो जांच करो फिर करो। परंतु देह अभिमान ये सब करने नहीं देता है क्योंकि इंद्रियां मालिक हो जाती है ना, उत्तेजित हो जाती इंद्रियां। तो स्वराज्य जिसको बाबा कहते हैं ना, पहले इंद्रियों पर राज्य, और एक सेकेंड में कैसे इनको जीते तुरंत, नहीं हाँ बाबा कहते नो नॉट, NOT नॉट, नहीं, ब्रेक लगा दिया तुरंत। मन के लिए भी ऐसे ही है, नहीं करना है नहीं सोचना है। कई कहते ना ये बहुत उनकी शिकायत है, बहन जी व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, योग नहीं लगता है, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। और यहाँ तक कई शिकायत करते कि जब ज्ञान में नहीं थे तो भी ऐसे संकल्प नहीं आते थे, ज्ञान में आने के बाद और ही ज्यादा बुरे संकल्प आते हैं जो पहले कभी नहीं आए। ये सब क्यों होता है, क्योंकि वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि दबाने की कोशिश की तो ऊपर आ जाएंगे। इसलिए बाबा मिसाल देते हैं ना, वेद लोग क्या कहते हैं कि ये दवाई लोगे तो वो जो बात है वो बाहर आके खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं क्रॉनिक बीमारियां, बहुत पुरानी बीमारियां होती है, वो एलोपैथी दवाई लेते लेते दब जाती है, केवल खत्म नहीं होती है। कभी भी एलोपैथी दवाइयों से खत्म नहीं होता है कुछ, और ही साइड इफेक्ट आ जाते हैं, दूसरी कोई बीमारी आ जाती है, वो दब जाती है, वो भी नहीं जाती और ही आ जाती है। इसलिए आयुर्वेद होम्योपैथी इसके पीछे अभी बहुत है, नेचुरोपैथी। तो वो कहेगा ये सब जो टॉक्सिन्स है वो सब बाहर निकलेंगे, पर घबराना नहीं, निकलने दो और निकल करके खत्म हो जाएंगे, वेद लोग ये कहते हैं। और आजकल के एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करेंगे, हाँ ये दवाई एक दिन में तुम ठीक हो जाओगे। तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर ने कहा कि अभी जुकाम खांसी जरा सी है, वो 3 दिन में तो अपने आप ठीक हो जाती है जुकाम, जब हो जाता है तो 24 घंटा 48 घंटा 72 आवर्स 72 घंटे लगते हैं। तो 3 दिन कहो या 72 घंटे कहो, उसमें अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो थोड़ा वायरस था कुछ भी, हम उसको ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी आयु उतनी है, लेकिन हम उसको बॉम्ब से मारते हैं। और वो मच्छर को बॉम्ब से मारा जाता है क्या, इतनी एंटीबायोटिक्स देंगे, इतनी बापरे जबरदस्त, और उससे इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक शक्ति खत्म हो जाती है, फिर अगली बार दोबारा जल्दी आ जाएगा, फिर और उनसे ऊंची दवाई है तो और बढ़ जाएगा, बहुत है। तो ये भी बाबा कहते उसी समय उसको रोको। कैसे रोकना है? रोकना माना सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि दो तरीके होते हैं, तीन तरीके कहेंगे। आपके बाल्टी में गंदा पानी है, अब उस गंदे पानी को निकालना है, तो निकाल करके साफ पानी भरो मान, तो ये एक तरीका है। नलका खोलो, पहले निकाल के साफ करके साफ पानी भरो, परंतु अभी उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, तो साफ पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो धीरे धीरे वो गंदा पानी निकलता जाएगा निकलता जाएगा। या उसको ठहरने दो, तो अपने आप गंदा पानी नीचे चला जाएगा। पर एक और तरीका है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, उसको उबालो और उबाल करके उसकी बाफ बनाओ और वो बाफ को फिर कंडेंस करो, उसको फिर पानी में लाओ, है तो वो पानी बाफ भी फिर उसको करो, तो वो इतना स्वच्छ साफ पानी होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में, उबाल करके बाफ बनाई और वो बाफ को फिर से पानी का रूप दिया, तो इतना साफ स्वच्छ पानी होता है। तो योग वास्तव में हमारा क्या है? केवल दबाना नहीं है, उसको शुद्ध करना है। इसलिए बाबा कहते, आज भी बाबा ने कहा वरदान में, मेरा मेरा मैं मेरा मैं मेरा कहते हैं। अब मैं मेरा चलो कहते हो तो उसको आप कैसे परिवर्तन करो? मैं कौन? आत्मा। तो जब भी मैं शब्द आए मुख से तो मैं आत्मा, मेरा शब्द आए, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा 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 बाबा, तो ये परिवर्तन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, हद से बेहद में आ गए। और जब हद से बेहद में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये परिवर्तन एक सुखद परिवर्तन का रूप ले लेता है। तो परिवर्तन हमें लाना है, क्योंकि बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। ब्राह्मण तो बन गए, मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा कह दिया, बाबा ने कहा मेरे बच्चे और बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो बाबा के अडॉप्टेड बच्चे तो बन गए, ब्राह्मण भी कहला दिए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भी कहलाए। लेकिन यही तो सब कुछ नहीं है ना, तो ब्राह्मणों को क्या बनना है, क्या लक्ष्य है? फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। पर ब्राह्मण और फरिश्ता बनने के बीच में बहुत कदम क्रॉस करने हैं। तो एक तरफ है इंद्रियों पर जीत, मन उनको वश में करे, परिवर्तन करे, फिर मन के ऊपर बुद्धि। अभी क्या होता है, जो देह अभिमानी होगा, इंद्रियां मालिक है ना, तो इंद्रियां जैसे चलाती मन चलता है, फिर मन बुद्धि को दबाता है। अंतरात्मा, जो अंतरात्मा की आवाज जिसको कहते बुद्धि, वो तो सही निर्णय देती है, लेकिन उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि आत्मा तो अपने असली रूप में तो शुद्ध है ना, तो बुद्धि तो सही निर्णय देती है, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा की जो स्थिति है उस अनुसार वो सही निर्णय देती है। पर फिर क्योंकि मन इंद्रियों के वश हो गया तो गलत काम हो गया, और गलत काम हो गया तो फिर पश्चाताप होता है। तो इसलिए बुद्धि मन को दिशा दे और मन इंद्रियों को दिशा दे, फिर कर्म हो, ये सही तरीका है। टेंशन क्यों होता है? क्योंकि मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है। मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, और संस्कार तो कुछ और ही है, और फिर संघर्ष चलता है, और वो जो संघर्ष चलता है उसी को टेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं। अगर बुद्धि बाबत से लगी हुई हो और मन को वो जीत, मन को वश करे, मन इंद्रियों को वश करे, तो कोई टेंशन नहीं, सब कर्म सही होंगे, वो है सच्ची स्वतंत्रता। ओम शांति।